मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 4 दिसंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही दोस्तों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के बैच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्तों के नाम हैं विपिन कुमार, आप न्यू दिल्ली से हैं, अजीत कुमार यादव मुंबई महाराष्ट्र से हैं, अमित कौशल आप बेगूसराय बिहार से हैं, प्रांशु राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, रश्मि कुमारी भागलपुर बिहार से हैं, रोशनी सोनी महोबा उत्तर प्रदेश से हैं, रूबी कुमारी कटिहार बिहार से हैं, भारती साहू बालोद छत्तीसगढ़ से हैं और जितेंद्र बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं। तो विपिन, अजित, अमित, प्रांशु, रश्मि, रोशनी, रूबी, भारती और जितेंद्र, आप सभी नौ साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो छुट्टी के दो दिन बीते हैं, इन दिनों में आपने अपने जरूरत की दूसरे सारे काम निपटा लिए होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि 5 दिन अब जो बचे हैं इस सप्ताह के, जो आज से शुरू हो रहे हैं, इन पर आप पूरी तरह से फोकस हो सकें। तो जो छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं बेवजह से, उनसे आपने मुक्ति पा ली होगी। देखिए, बेवजह डिस्टर्ब करने से कहने का मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि होता क्या है कि जब हमारे दिमाग में कोई काम करने का विचार अटका रहता है ना, तो हमें बार बार आकर के वो परेशान करता रहता है। वो जैसे याद आएगा लगेगा, अरे यार देखो आज ये करना है, देखो शाम को वहां जाना है। अब देखिए, वैसे तो जीवन है, अचानक कोई जरूरत आ पड़ेगी तो हमें जाना ही पड़ता है और खुशी खुशी जाना भी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन्हें हम निपटा करके, पहले से ही पूरा करके, खासकर छुट्टियों के दिन में अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, खाली कर सकते हैं। उससे जो अगर दिमाग आपका शांत है तो फिर आप प्रशांत महासागर बन जाएंगे, सबसे विशाल महासागर, यानी कि दिमाग की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा व्यापक हो जाएगी। और मुझे विश्वास है मित्रों कि कम से कम मेरे डेली ऑडियो लेक्चर सुनने वाले में जो मेरे नौजवान दोस्त हैं, वो अब तक कम इस कला में तो माहिर हो ही चुके होंगे और इस कला का उपयोग भी अपने जीवन के में करने लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। और आज मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे चाबहार बंदरगाह के ऊपर, लेकिन पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने न्यूज में सुना कि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यह है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, है ना? ये स्टेटमेंट है, एक आया है, ये किसी ने कहा है। चलिए, मैं नाम और पार्टी से ऊपर उठ करके बात करना ज्यादा सही होगा, नहीं तो चीजें फिर उलझ जाती हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव होना है, बस एक दो दिन में ही चुनाव हो जाएंगे। और पहले से ही ये बात कही जा रही है कि जो अध्यक्ष का चुनाव होना है उसके तहत जो राहुल गांधी, जो अभी तक कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वे ही अध्यक्ष बनेंगे। और इससे पहले पिछले लगभग 16-17 साल से उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, और इससे पहले भी काफी लंबे समय, बीच बीच में दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं थोड़े थोड़े काल के लिए। यहां जो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है कहने की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि जब अध्यक्ष का चुनाव होना होता है, देखिए जहां भी चुनाव हो रहा है तो आपको विकल्प उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अगर एक ही है और उसी को चुना जाना है तो फिर वो चुनाव नहीं है, है ना? वो तो फिर एक ही व्यक्ति के नाम पर मुहर लगाना है। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लीडर का व्यक्तित्व इतना विशाल हो कि पार्टी के लोग ये महसूस करते हो कि नहीं, इनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकेगा, या फिर कह लीजिए कि इनसे बेहतर हमें कोई दूसरा लीडर मिलेगा ही नहीं, तो सर्वसम्मति से हम लीडर चुन लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा है तो डेफिनेटली, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये लोकतंत्र का हनन है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व है वो उतना विशाल है। जैसे गांधी जी को लीजिए, अगर गांधी जी कांग्रेस के समय में कभी कह दें कि मुझे अध्यक्ष बनना है, तो उनके विरुद्ध खड़े होने का साहस की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जरूरत ही कौन समझेगा, मैंने साहस की बात नहीं करते हैं। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स कि आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के जब अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे तो गांधी जी के कैंडिडेट के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, और जो तिरुपति में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का जबलपुर के पास, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक जगह है, वहां सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया था अध्यक्ष पद के लिए। एक बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि किसी का व्यक्तित्व वास्तव में कभी कभी बहुत विशाल हो जाता है, लेकिन लोकतंत्र की क्या मांग है? लोकतंत्र की मांग यह है कि सबको अवसर मिलने की संभावनाएं दिखाई देनी चाहिए। आप देखिए कि वहां सुभाष चंद्र बोस ने एक साहस का काम किया, एक अंदर से खलबली पैदा की, और जो लोग चुपचाप बैठे हुए थे, या यूं कह लीजिए कि गांधी जी के कैंडिडेट के समर्थन में ही खड़े थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, किस तरह से मौका देखते ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में अपना मत दे दिया। तो यहां देखिए कि जो मतदान होता है अक्सर आपको ज्यादातर मामलों में मिलेगा वो गुप्त मतदान ही होता है। और सच पूछे तो अगर मतदान से आप गुप्तता को निकाल दें, खत्म कर दें कि नहीं ये गुप्त नहीं होगा, तो मतदान होगा ही नहीं। फिर तो बाद में पता चल जाएगा ना कि किसने किसको वोट दिया, तो बाद में आप उससे बदला ले सकते हैं, उसको कुछ भी आप सजा दे सकते हैं, उसके लिए मन में दुराग्रह पाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। अभी जो स्थिति है वो शुरू से ही अखबारों में ये आने लगा था मित्रों कि जो नॉमिनेशन होगा वो सिर्फ राहुल गांधी जी का ही होगा, वही नॉमिनेशन करेंगे और फिर एक दिन उनको अध्यक्ष के लिए मतलब डिक्लेयर कर दिया जाएगा और लगभग लगभग ये होने की संभावना है। अब इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, मैंने दोनों स्थितियां आपके सामने रखी कि किसी का व्यक्तित्व जब बहुत विशाल होता है तो पार्टी सर्वसम्मति से उन्हें चुन लेती है। अब आप देखिए कि जब हमारे जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता का भी जब चुनाव होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में जो फिर बाद में शपथ लेते हैं, या स्टेट में मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लेते हैं, वो भी लगभग लगभग सर्वसम्मति की ही स्थिति होती है। वहां भी कोई चुनाव नहीं होता, नहीं तो अगर वैसे देखा जाए तो वहां भी चुनाव होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के जितने भी एमएलए या एमपी चुन करके आए हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए फिर मतदान करें कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, राइट? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं, सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, है ना? तो देखिए, इसके दोनों पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है कि जब सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी लीडरशिप की ताकत बढ़ जाती है कि सभी उनके पीछे हैं, और अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई देने लगता है, भेद भी दिखाई देने लगता है, मनमुटाव भी होने लगता है, पार्टी के अंदर ही आप यूं कह लीजिए कि दो धड़े बन जाते हैं, तो फिर कार्य करने में दिक्कत आती है। और जिन्हें लीडर चुना गया है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, उनके मन में भी फिर थोड़ी सी खटास सी पैदा होती है, या ये कह लीजिए कि दो गुट बन जाने के बाद आपस में खींचातानी भी शुरू हो जाती है। तो ये दोनों पक्ष मित्रों मैंने आपके सामने रखे हैं, पार्टी के स्तर पर भी और राजनीति के स्तर पर भी, जो हमारे संविधान के अंतर्गत कहा गया है, बताया गया है। तो मैंने कुछ आपको फूड फॉर थॉट्स प्रोवाइड किए हैं, और वो इसलिए प्रोवाइड किए हैं क्योंकि जो आपका जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है उसमें जो पॉलिटी शब्द है उसका मतलब इसी से ही है, इसी तरह की कुछ व्यवस्थाओं से होता है। तो इस पर अब आप लोग अपने अपने ढंग से विचार करें। दोस्तों, एक छोटी सी खबर थी भोपाल कार्बाइड गैस को लेकर के, कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात में यहां जो यूनियन कार्बाइड जो कारखाना था जहां पेस्टिसाइड्स बनती थी, कीटनाशक औषधियां बनती थी, उसमें गैस रिसी थी, और वो दुनिया के जो सबसे बड़े जो औद्योगिक आप ये कह लीजिए कि हादसे हुए हैं उनमें से यह एक माना जाता है, जिसमें लगभग लगभग 15,000 लोग, ये कहा जाता है कि डेथ हो गई। चूंकि मैं भोपाल में रहता हूं तो मुझे मालूम भी है कि कितना ज्यादा यह विनाशक रहा है। ट्रेन जब उस समय जब गैस रिसी थी तो ट्रेन जो गुजरी भोपाल रेलवे स्टेशन से उनमें गैस घुस गई तो उसमें लोगों की मृत्यु हो गई। भयानक किस्म की जो उसके जो प्रभाव हैं कह लीजिए, आज भी आने वाली पीढ़ियां भुगत रही हैं। कोई बच्चा, उसके बाद जो बच्चे हुए, अपंग पैदा हो रहे हैं, मतलब अलग अलग किस्म की विकलांगता, अलग बहुत ही भयानक किस्म की मानवीय त्रासदी रही है। और जनरल स्टडीज में जो इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है वो गैस को लेकर के पूछा जाता है कि कौन सी गैस रिसी थी, वो आपने न्यूज में सुनी भी है, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मित्रों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है चाबहार बंदरगाह। आपने न्यूज में सुना कि इसका कल शुभारंभ हुआ, उसके फर्स्ट फेज का शुभारंभ हुआ है। ये टॉपिक मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाला जो एग्जाम होगा मेंस का, उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से। और खासकर आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है, उस इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक का ये एक, मुझे लगता है कि एक स्थायी किरदार है ये। इसको लेकर के आप बहुत लंबे समय तक अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, खासकर जब अफगानिस्तान के साथ चर्चा की बात हो, ईरान के साथ चर्चा की बात हो, चाइना के साथ चर्चा की बात हो, और यहां तक कि मध्य एशिया के साथ ही क्यों न बात हो, या आप कह लीजिए कि थोड़ी सी एक्ट ईस्ट पॉलिसी या पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो भारत के संबंध है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर के कंटेंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में आप चाबहार बंदरगाह का जिक्र कर सकते हैं। अभी जब 2017 के जो प्री एग्जाम फ्रेंड्स हुए हैं, आप 2017 के प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन देखिए, उसमें बकायदे चाबहार बंदरगाह पर प्रश्न पूछा गया है। इसी से आप इसके इंपॉर्टेंस की पता लगा का अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपको प्रश्न पढ़कर सुना देता हूं। प्रश्न है, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है। आप देखिए कि अब वो सीधे जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से नहीं पूछा गया है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में है या किस खाड़ी में स्थित है, किसके पड़ोस में है, कौन विकसित कर रहा है, इससे किसको फायदा होगा, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं जो बड़े स्ट्रेट से होते हैं। इसमें क्या है कि विकसित करने का क्या महत्व है, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का। देखिए अब उसमें चार ऑप्शन दिए हैं, अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी, तेल उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर होना नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। अब आप थोड़े से ऑप्शन पर जाइए, देखिए इसके बारे में ढेर सारी बातें आज अखबारों में है भी, कुछ ने एडिटोरियल कमेंट भी लिखे हैं, मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा, वहां आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मैं आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, कैसे अपने लिए टॉपिक चुनेंगे और उन टॉपिक पर किस तरीके से आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं मित्रों। अब आप देखिए कि अगर आपने कभी चाबहार बंदरगाह के बारे में उस समय पढ़ा होगा, और खासकर जो विद्यार्थी इस साल एग्जाम में बैठे हैं वो अपने दिमाग की स्थिति का आकलन कर सकते हैं इससे, कि चाबहार बंदरगाह आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली कोई नया नाम आपको नहीं लगा होगा क्योंकि इसकी बहुत चर्चा हुई थी, इसीलिए वो करंट अफेयर्स के तहत पूछा भी गया है। अब वो आपको उलझा किस में रहा है, आप देखिए उलझा इस रूप में रहा है, और आप देखिए कि जो चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सबका संबंध कहीं ना कहीं व्यापार से है, और व्यापार आप बंदरगाहों का संबंध व्यापार से ही होता है, बंदरगाह सबसे ज्यादा उसी के लिए काम आते हैं या फिर नौसैनिक अड्डे के रूप में काम आते हैं, तो चारों बंदरगाह से रिलेटेड है। आपको उलझाने की क्या कोशिश की, अगर आपने ये पढ़ा कि चलिए चाबहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी में है, ये आपको फैक्ट मालूम है, अब आप देखिए कि जो ऑप्शन दे रहा है वो किस तरीके के दे रहा है। भारत से जब कोई भी जहाज चलेगा, भारत के आप वेस्ट को ले लीजिए, क्योंकि यहां जितने भी देशों के नाम दिए हुए, देखिए अफ्रीका है, तेल उत्पादक अरब देश हैं, अफगानिस्तान है, मिडिल एशिया है, पाकिस्तान है, इराक है, ये जितने भी देश हैं ये सब के सब भारत के वेस्ट में हैं। तो पश्चिम से अगर कोई जहाज चलेगा तो वो गुजरात के बंदरगाह से चलेगा, जैसे कांडला से चलेगा, समझ लीजिए कांडला से चलेगा, और फिर वो इन देशों की तरफ मूव करेगा, तो इन सारे देशों में वो कहीं भी पहुंच सकता है, मैं व्यावहारिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, अनुमान के तौर पर। क्योंकि उसी डायरेक्शन में की चीजें दी जा रही हैं। इसमें आप देखिए कोई चाइना का नाम नहीं लिया है कि चाइना की तरफ होगा, या कोई आपके साउथ ईस्ट एशिया का नाम नहीं लिया है ना कि साहब मलेशिया पहुंच जाएगा या वियतनाम पहुंच जाएगा या जापान पहुंच जाएगा, नॉट एट ऑल। वो आपके दिमाग को बहुत अच्छे से जानता है तो क्लियर करना चाहता है। अफ्रीकी के साथ भी हो सकता है, अरब देशों के साथ भी हो सकता है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ तो है ही, इसका सही उत्तर है, पाकिस्तान इराक और भारत के बीच भी हो सकता है, राइट। तो अब आप देखिए कि कैसे उसने उलझाया है, तो आपके दिमाग की वो स्पष्टता देखना चाहता है, क्लैरिटी देखना चाहता है। इसमें जो जांचना चाह रहा है वो ये जांचना चाह रहा है कि आप तथ्यों को कितने सही तरीके से जान पाते हैं। और देखिए वो ऑप्शन में आपको उलझा जरूर रहा है, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से पढ़ाई करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो वह आपको उलझा नहीं पाएगा। क्योंकि जब चाबहार बंदरगाह की जितनी भी खबरें उस समय आ रही थी, उन सब में ये मेंशन किया जा रहा था फ्रेंड्स कि पाकिस्तान के ऊपर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। अभी अगर हमको अफगानिस्तान को कोई सामान भेजना है तो हमें पाकिस्तान से होकर के जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है आप जानते ही हैं। दूसरी ओर चीन लगातार पाकिस्तान पर अपना दबाव बनाता चला जा रहा है, दोस्ती बढ़ाता चला जा रहा है, चीन के साथ भी हमारे संबंध है आप वो भी जानते हैं। तीसरी चीज, चीन अपना वन बेल्ट वन रोड का सिस्टम लेकर के चल रहा है और बकायदे ग्वादर बंदरगाह में वो विकास भी कर रहा है, तो भविष्य तो भारत के लिए थोड़ा सा चिंताजनक था। तो अब पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करें, हम अफगानिस्तान ईरान से कैसे अपने व्यापार करें और मध्य एशिया तक कैसे पहुंचे, क्योंकि रोड के रास्ते से हम सिर्फ पाकिस्तान के माध्यम से जा सकते थे, वैसे बहुत घूम करके जाना पड़ेगा तो हमारी चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, तो हम उन बाजारों में अपना सामान बेच कैसे पाएंगे। तो फिर इन्होंने तरीका निकाला चाबहार बंदरगाह, हमारे कांडला से जहाज चलेंगे सीधे चाबहार बंदरगाह पहुंचेंगे और अब हम सीधे, अब पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, रोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सड़क मार्ग की, हम जल मार्ग से पहुंच जाएंगे और दूरी भी कम हमारी हो जाएगी, 650 नॉटिकल माइल्स की दूरी रह जाएगी कांडला से ग्वादर बंदरगाह के, जहां 2.5 दिन की यात्रा करके सामान वहां पहुंचाया जा सकेगा। अगर ये फैक्ट आपके दिमाग में है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के, पाकिस्तान का फैक्ट अगर आपके दिमाग में है, तो आप देखेंगे कि बड़े आराम से आप सी को ढूंढ लेंगे, लेकिन वो भी कम चालाक नहीं है। पाकिस्तान को यहां दो जगह मेंशन किया हुआ है, एक तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को लेकर के और दूसरा नीचे इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन को दिया हुआ है। लेकिन आप बहुत अच्छे से इसे इसलिए पकड़ सकते हैं क्योंकि आपको अफगानिस्तान का नाम मालूम है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो अफगानिस्तान भी आपके दिमाग में है, सी जो इसका सही उत्तर है आपकी पकड़ में आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों चाबहार बंदरगाह के बारे में मैं आपसे चर्चा इसलिए नहीं करने जा रहा हूं कि वो आज अखबारों में दिया हुआ है, हाँ ये बात मैं जरूर कहूंगा कि आप प्लीज उसको ध्यान से पढ़ लें समझ लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों जहां तक न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं कुछ क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, गौरव शर्मा, पूजा गोयल शिवपुरी मध्य प्रदेश से, उपेंद्र यादव देवरिया उत्तर प्रदेश से, रूबी कुमार, मोनिका शर्मा गोहाना हरियाणा से, स्वाति रानी किरातपुर उत्तर प्रदेश से, रेणुका रायसिंह नगर राजस्थान से, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, डिम्पल वाडेकर, अन्नु प्रताप सिंह, राजबीर सिंह, वैशाली जोशी, शालू सिंह और अजय कुमार द्विवेदी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।